हरे कृष्णा, आपका प्रश्न है कि अगर भगवान श्री कृष्ण का एक बार नाम लेने से मनुष्य के पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पितामह भीष्म ने ना सिर्फ भगवान का स्मरण किया था बल्कि उनके साक्षात दर्शन भी किए थे, तो उनका वो पाप क्यों नष्ट नहीं हुआ था जो उन्होंने कई जन्मों पहले किया था और उन्हें अपने अंतिम समय में बाणों की शैया पर सोना पड़ा? बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर ये है कि ये असल में ना लिखा हुआ नहीं, श्री प्रभुपाद ने इस अपने तात्पर्य में ये नहीं बताया है कि उनको, भीष्म पितामह को ये सजा उसी कीड़े के मारने की वजह से मिली थी। लेकिन चलो अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि इस वजह से उनको ये सजा मिली थी, तो भी ये संसार दुखालयम है, इस संसार में दुख मिलना अनिवार्य है। चाहे आप कितने ही कोई भी स्टेज पर हो, कितने ही महान भक्त तो क्यों ना हो, भले आपके सारे अपराध क्षमा भी हो जाते हैं ना, फिर भी दुख मिलना अनिवार्य है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो बनाई गई है आपको दुख देने के लिए। अब इस संसार में दुख मिलना तो अनिवार्य है, जरूरी है, हर सूरत में आपको दुख मिलेंगे। अब ये दुख किस तरह से मिलते हैं उसकी एक अलग अलग कैटेगरी है। जो आम व्यक्ति होते हैं ना, जैसे साधारण जो अभी तक भक्त नहीं बने हैं, जिन्होंने भगवान का नाम का स्मरण नहीं किया है, उनको दुख मिलते हैं अपने कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए हैं उनके अनुसार उनको दुख मिलते हैं। दुख मिलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उनकी कैटेगरी ये है कि जिनको, जो अनजान है, जो भक्ति नहीं करते हैं, उनको दुख मिल रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार। और उसके ऊपर जो भक्त हैं, अब भक्त तो भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तो भगवान के नाम के जप करने से तो उनके कर्मों के जो अपराध हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, फिर अपराधों का फल क्यों भोगना पड़े। तो भक्तों को कष्ट किस लिए मिलते हैं? ताकि इस संसार में उनकी परीक्षा होती है, क्योंकि उनको दूसरे संसार में जाना है। अब उनको ये दुखालय संसार त्याग करके प्रमोशन होनी है, नई जगह पे जाना है जहाँ पर कोई दुख नहीं है। इस जगह पर जाने के लिए उनको कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये भक्तों के दुख जो हमें नजर आते हैं ना, कि जो भक्त लोग जो भगवान के नाम का भी जप कर रहे होते हैं और साथ साथ में ना उनको दुख भी मिल रहे होते हैं, वो सिर्फ उनकी परीक्षा होती है। जब वो इन परीक्षाओं से सफल हो जाते हैं, तब उन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या फिर जो प्योर डिवोटी, जो प्योरेस्ट डिवोटी हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, या फिर देवकी मैया और वासुदेव, या भीष्म पितामह जैसे जो महाजन है, क्या उनकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? इनकी परीक्षा, जैसे महाराजा दशरथ को भी दुख मिला यहाँ संसार में आकर, उनको भी दुख भोगना पड़ा, देवकी मैया को दुख भोगना पड़ा, वसुदेव जी को दुख भोगना पड़ा, इनकी, भीष्म पितामह को दुख भोगना पड़ा, इनकी जो है ना, इनको जो दुख मिल रहे ना, उसकी वजह ये नहीं है, उनके अपराध भी नहीं है, उनकी परीक्षा भी नहीं, ये तो लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं। ये जो भगवान के शुद्ध वैष्णव, जो शुद्ध डिवोटीज होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं में अपना सहयोग देने के लिए आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनके माध्यम से हमें ये दिखाते हैं कि चाहे आप कितने भी प्योर डिवोटी क्यों ना बन जाओ, इस संसार में आकर आपको दुख भोगना पड़ेगा। और भीष्म पितामह के बाणों की शैया पे 9 दिन तक सोने का एक कारण ये भी बताया गया, शास्त्र में बताया जाता है कि उसने अधर्मी दुर्योधन का नमक खाया था, यानी कि उसकी रगों में अधर्मी दुर्योधन के, ये जो राज्यसभा, धृतराष्ट्र की जो राज्यसभा है जहाँ पर हर समय अधर्म होता रहता था, और उनका नमक खाया था, उसकी रगों में वो खून चल रहा था, वही खून जो है वो उसी अनाज से बना था ना जो अधर्म का था। तो वो चाहते थे, भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मैं अपने इस, जो भी मैंने यहाँ पर अपराध वाला अनाज खाया है, जो मैंने ये नमक खाया है, उस सारे अपनी रगों से वो सारा खून खत्म करके फिर भगवान के धाम में जाऊं। बेशक उनके अपराध नष्ट हो गए थे, लेकिन ये उनकी इच्छा थी। अब भगवान के भक्त की जो इच्छा होती है, तो भगवान उसको पूरा करने का उसे पूरा पूरा अवसर प्रदान करते हैं। तो भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मैं इस अधर्मी दुर्योधन का जितना भी अनाज खाया है, वो मेरे रगों में से वो सारा खून बह जाने दो। तो इसलिए उनको 100 बाण लगे थे, ताकि उनकी, और उतने दिन, 9 दिन में उनके जिस्म का पूरा खून जो है, जो अधर्मी पापी दुर्योधन के अनाज से बना था, वो सारा समाप्त हो गया था। और दूसरी वजह एक ये भी है कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता है तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। अब ये उनकी प्रतिज्ञा थी। अब जब तक वो जिंदा रहते, यानी कि जब तक वो युद्ध करने के योग्य रहते, तो क्या होता, उनको लड़ाई करनी पड़ती। यानी कि उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जरूरी थी कि लड़ाई भी हो और वो भी लड़ाई में ना लड़े, तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए थी कि वो इस लायक ही ना रहे कि वो लड़ाई कर सके। लेकिन तब तक वो अपने प्राण त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि प्राण में तभी त्यागूंगा जब ये हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में जाएगा, यानी जब पांडव राज करेंगे ना तभी मैं त्यागूंगा। तो तब तक के लिए भगवान ने ऐसी उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ऐसी सिचुएशन उनको क्रिएट करके दे दी कि ठीक है, तुम इसी तरह बाणों की शैया पे सोते रहो और जब तक पांडव जो है वो राज करेंगे, यानी जब तक अधर्म का नाश हो जाएगा और हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में चला जाएगा, फिर तुम प्राण त्याग देना। ये सब जो भी है वो हमें ये सिखाने के लिए है कि यदि हम अपराध का साथ देते हैं तो हमें डेफिनेटली कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, अगर आपको कोई बोले ना कि देखो मेरे को प्रॉमिस करो कि आप मेरा साथ दोगे, तो आपको ये नहीं बोलना, यानी भीष्म पितामह को क्या बोल, भीष्म पितामह से ये कहा गया कि आप प्रॉमिस करो कि जो भी धृतराष्ट्र के या फिर है ना शांतनु के वंश में आएंगे उनकी आप सहायता करोगे। तो उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, जो भी सिंहासन पे बैठेगा मैं उसकी सहायता करूंगा, एज अ सर्वेंट उसकी सेवा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको क्या बोलना चाहिए, अगर वो धर्म पर होंगे तो उनकी सहायता करूंगा, वरना मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, मैं अधर्म का साथ कभी भी नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसने क्या बोला, हाँ भले वो जो भी करेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो ये इतिहास जो होता है वो हमें सिखाने के लिए होता है कि हमें प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए तो सोच समझ कर लेनी चाहिए, हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो सोच समझ कर लेना चाहिए, वरना चाहे हम कितने ही शुद्ध डिवोटी क्यों ना हो, हमारे विचार कितने शुद्ध हो, लेकिन यदि हम सोच समझ कर फैसला नहीं लेते, यदि शास्त्र के अनुसार ज्ञान की चक्षुओं को बंद कर देंगे और फिर कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए दुख का बायस बनेगा। हरि बोल।